امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر کا راستہ اپناؤ کہ صرف یہی راستہ علم تک پہنچتا ہے۔ پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ پروگرام صبح زندگی میں خرم بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں۔
میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن، آج کی صبح جو ہے وہ برکتوں سے بھری ہوئی اور خوشیوں سے بھری ہوئی آپ لوگوں کے لیے۔
انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ خرم، اور کیسے ہیں آپ؟
بالکل اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں،
اور ٹھنڈک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟
ٹھنڈک جو ہے بہت مزے کی ٹھنڈ ہو رہی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ کپڑے اپنے اچھے پہنے ہو تو مزہ آتا ہے ٹھنڈ میں،
ہاں بالکل۔
لیکن یہ ہے کہ جو ہوا منہ پہ لگتی ہے اس کا بھی اپنا، یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھتی اور جو ہے بڑے ظالمانہ طریقے سے جو ہے حملہ کرتی ہے۔ نہیں، بارہ یہ کہ تھوڑا سا خشک موسم ہو گیا تہران میں، اور جو ہے ابھی ان شاء اللہ کچھ دنوں میں برف باری بارش شروع ہو جائے گی،
یقیناً ہوگی کیونکہ ٹیمپریچر کافی حد تک گر گیا ہے، تو اس میں یقیناً ٹھنڈک ہوئے، اور تقریباً پورے ایران میں یہ صورتحال ہے۔ تو جو لوگ، جو ہمارے ناظرین یہاں پہ زیارتوں کے لیے تشریف لا رہے ہیں یا بہرحال گھومنے گھامنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اپنا خیال بہت زیادہ رکھیں۔ شمالی ایران میں بہت زیادہ ٹھنڈک پڑ رہی ہے۔ ہمیدان شہر کا فی الحال انشاءاللہ آپ کو ہم گھمائیں گے ضرور، لیکن فی الحال رخ مت کیجیے گا تو بہتر ہے، وہاں سردی بہت، کم سے کم میرے حساب سے بہت زیادہ سردی۔
بالکل نہیں، ٹھنڈ واقعی جو ہے پڑی، اور بہت اہم یہ جو بات آپ کو حسن بتا رہے ہیں اس کو جو ہے غور کیجیے گا، کیونکہ یہاں کی سردی جو ہوتی ہے وہ جو ہے بہرحال زبردست قسم کی سردی ہوتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ہفتے کا موضوع ہمارا، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، آج کا دن آخری دن ہے، اختتام کو پہنچ گیا۔ کل جو ہے ہم نے اس کا نچوڑ بھی نکلوایا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ہمارے جو مہمان ہوئے تھے ان کی گفتگو جو ہے آپ لوگوں کی مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ بہرحال آج آخری دن ہے، آپ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو حسن کے پاس فیس بک ہمارا آن لائن ہے، اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا اس موضوع کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں۔
جی بالکل، اور بھی راستے ہیں ہم سے رابطے کے لیے، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے آپ ہم سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں۔ ایک آپ پروگرام دیکھیے، اس کے یعنی اتنا وقت دیجیے کہ آ کے ڈاکٹر عثمان خالق آرام سے یہاں پر بیٹھ جائیں۔ پروگرام صبح زندگی میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آپ کو لائے ایک اور ایران کے شہر میں، جہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پرانی جو تہذیب تھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوئی، اور وہ ہے ہمیدان شہر۔ گنجنامہ پہاڑیوں میں جو بہت تفریح زبردست چیزیں رکھی گئی ہیں، ان میں ایک ہے یہ جو زبردست گاڑیاں ہیں، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، بلکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں، اب تھوڑی دیر میں نیچے آئیں گے۔ کس اسپیڈ سے وہ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ تفریح کرنا، اگر خصوصاً ایسی ورزشیں ہونا، وہ بھی بہت مزہ آتا ہے اس میں، اور اس طرح کی یقیناً تاریخی جگہوں پر بھی اس طرح کی تفریحی چیزیں ہونا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ پھر آپ ہر قسم کے آدمی کو ہر طرح کی چیزوں سے اس کو روشناس کر سکتے ہیں، اور اس کو پتہ چل سکتی ہے کیا کیا ہے ہم لوگوں کے ماحول میں۔ اگر ہر تاریخی چیز کے ساتھ ہم لوگ ایک ایسی چیز رکھ دیں تو بہت سارے لوگوں کو اس جگہ پر ہم لوگ اکٹھا کر سکتے ہیں، جو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیدان شہر کافی حد تک کامیاب رہا ہے۔ ہمیدان شہر ہر ایک کے لیے بہت ہی زیادہ دلچسپ ثابت ہوگا، اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہر قسم کی تفریح موجود ہے۔ جو لوگ تاریخ سے جن لوگوں کی دلچسپی ہوگی، وہ بھی بہت ہی یہی کہہ سکتے ہیں ان کو بہت مزہ آئے گا، اور جو دوسری تفریحات کو بھی پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی یقیناً، اور جو دونوں پسند کرتے ہیں ان کا تو کیا کہنا، ان کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اس میں۔ بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام صبح زندگی میں۔ अच्छा यहाँ पे जो है आबशार आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये इसको गंजनामा बहरहाल धार आबशार जो भी आप नाम दे लें, पानी ज़्यादा नहीं है लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे बहुत खुनकी सी महसूस होगी। और ये जो पहाड़ भी आप देख रहे हैं ये कोई वो नहीं है कि मसलन मस्नूई तौर पर बनाए गए हो, बल्कि ये हकीकत में ही इसी शक्ल के पहाड़ है। ज़बरदस्त यहाँ पे पिकनिक का समा भी है, छुट्टी के दिन है, छुट्टी का दिन है तो बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं अपना वक्त गुजारने, सिर्फ यानी हमीदान शहर के नहीं है बल्कि पूरे ईरान से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। खास जगह पर जहाँ इसी पूरे इलाके में यानी गंजनामे के इलाके में हम आपको लेके आए हैं वो है यानी यह पूरे इस इलाके का सबसे अहम हिस्सा जिसकी वजह से ये मशहूर हुआ है, और वो है एक पत्थर के ऊपर ऐसे नक्शो नगार मिले जो कुछ लिखा हुआ था, तो वो पता चला कि वो ख़ास जो रस्म अल-ख़त इस्तेमाल की जाती थी फ़ारसी में उसको ख़त मीखी कहते हैं इस्तेमाल की गई थी, और उसके ज़रिए पता चला था कि उसके ऊपर एक ख़ास किस्म के पैगामात लिखे गए थे अवाम के लिए कि किन चीज़ों का ख्याल रखें किन चीज़ों का न रखें। ये मैं बात कर रहा हूँ करीब इस्लाम आने से पहले ईरान में, और उस वक्त के भी जो बादशाह थे मुख्तलिफ और हखामनशी दौर के खुसूसन कहा जाता है कि उन्होंने पत्थर के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें यानी लिखवा दी थी और खुदवा दी थी उसके ऊपर, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये रस्म-उल-ख़त तहजीब जो कह सकते हैं ईरानियों में है और यहाँ पे दिखाई देती है भरपूर तरीके से, आपको हर चीज़ में दिखाई देती होगी, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से ये कोई एक कह सकते हैं 200 साल 300 साल तहजीब नहीं है बल्कि कई हज़ार साल पुरानी है। इसमें चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो यहाँ पर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं जिस जगह पर हम आपको लेकर आए हैं, यहाँ पर कुछ पत्थर पे चीज़ें दिखाई दी, और जब यहाँ पे तहकीक हुई ये बात कर रहा हूँ मैं 1840 में सबकी, और उस वक्त पता चला कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो करीब 2500 साल पुरानी हैं, यानी हखामनशी दौर का सबसे पहला यानी दौर जो गुज़रा है वो कहा जाता है कि करीब 2500 साल से लेकर 2000 साल पुराना था, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और इसके ऊपर यानी बाद में जो तहकीकात हुई हैं इनके ज़रिए बहुत सारे यानी रस्म अल-ख़त इनका पता चला, वो जो हखामनशियों का था कि वो ख़ास किस्म की लिखावट इनकी जो होती थी तो उसके ज़रिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में इन लोगों को मदद मिली और आगे के कतीबे जो थे वो भी दिखाई देने लगे और पढ़े जाने लगे। अब इसमें जो है ख़ास चीज़ अगर आप देखें यहाँ पर तो मुख्तलिफ चीज़ें जो लिखी हैं उसमें खुदा के नाम से शुरू किया गया है और उसमें कहा है कि खुदा ने मुख्तलिफ चीज़ें खल्क की, इसमें हमारी नेमतों को एक एक करके नाम उसमें लिया गया है, और उसके बाद जो नेमतों का नाम लिया गया है और आखिर में फिर उनसे सबसे कहा गया है कि तो क्या हम लोग शुक्र नहीं करना चाहिए ऐसे खुदा का। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि ईरान में अगर आपको याद हो मैंने काशान में आपको बताया था कि कभी भी मूर्ति की आपको कोई इबादत कहीं नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, और 2500 साल यानी पुरानी जो यहाँ की तहजीब है यानी जो लिखी गई है उससे पहले भी मौजूद थी उसमें कहीं पे भी मूर्ति पूजा आपको नहीं मिलेगी, यानी हर जगह पर खुदा की ही इबादत मुख्तलिफ नामों से हो सकता है लेकिन की। जी फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में, हमीदान से हम लोग लौट आए हैं। इस वक्त हमारे साथी बता रहे हैं यहाँ कैमरामैन सारे पीछे तबसरा होता है प्रोग्राम पर, तो वो बता रहे थे कि इस वक्त वहाँ पे बर्फ़ होगी और वहाँ पे इसकी रिसोर्ट भी है तो वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं हमीदान शहर में जो लोग इसकी के शौकीन। अलावा एजाज हुसैन साहब ने भी हम लोगों को सलाम कहा है, तो वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम आप देख रहे हैं। और बहरहाल एक जूते का एडवर्टाइजमेंट भी है, 30% उसमें वो लगा है हम लोगों के लिए, ये सब चीज़ें भी आने लगी हैं, 30%
अच्छा
सेल है उसमें, तो वो पता लगाना है कहाँ पे।
मेरे ख्याल क्या ख्याल है, चलते हैं पहले फिर देख चेक करके आते हैं जूते, फिर
हाँ
बाद
बल्कि प्रोग्राम
में
बाद में कर लेंगे
चलें
इसमें, कि जल्दी गए। तो जैसा कि आप
बिल्कुल
नाज़रीन यकीनन आपको मालूम होगा कि डॉक्टर उस्मान खालिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, तो चलते हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, ग़ज़ाइयत के उमूर के माहिर हैं।
जी, बहुत शुक्रिया हसन। और मैं अपने नाज़रीन को सिर्फ ये बताता चलूँ कि पिछले 2 हफ्तों से डॉक्टर साहब जो है मौजू पे बात कर रहे हैं, और मौजू यही है कि जो हमारी ग़ज़ा है उसका हमारे बदन पे क्या असर होता है, जो हमारे बदन में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं, दोस्त बैक्टीरिया हैं, दुश्मन बैक्टीरिया हैं, वो कैसे काम करते हैं। और बात पहुँची थी हमारी यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर माँ के अंदर मौजूद दोस्त बैक्टीरिया कैसे उसमें मुंतकिल होते हैं, और मुंतकिल होते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, फ़ायदा है भी है नहीं, ये बात डॉक्टर साहब के साथ हमारी चल रही थी। तो चलते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं, सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब के।
वालेकुम अस्सलाम,
कैसे हैं डॉक्टर साहब?
अल्हम्दुलिल्लाह।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा टाइम निकाला। डॉक्टर साहब कहानी हमारी चल रही थी और आपने उस कहानी को पहुँचा दिया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर दोस्त बैक्टीरिया या दुश्मन बैक्टीरिया वो कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, क्या होता है?
जी वजह आपको मैंने बताई, माँ
बिल्कुल
उसके जो बैक्टीरियाज उसकी जो सारी ज़िंदगी की गज़ाइत रही होगी, या अगर प्रेगनेंसी से पहले या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर उस चीज़ को जो है वो स्टेबलाइज कर दिया जाए। असल में आज की गुफ्तगू के आखिर में मैं ये चीज़ बताऊंगा कि ये अभी एज अ स्पेशलिटी ये चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन बाज़ डॉक्टर्स हैं दुनिया में जो खुद से नॉलेज इकट्ठा करके जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और
ठीक
वो बिफोर द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी,
ठीक है,
वो खुद जो है वो एक खास सेटअप में जो है वो रखते हैं औरतों को।
ठीक
बहरहाल बच्चा जब पैदा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो माँ ही से अपने जो है वो सारे बैक्टीरियाज जो है वो लेकर आता है, अब वही बैक्टीरियाज तकरीबन 2 से 3 से 4 हफ्ते लेते हैं,
सही,
उसमें गट में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कोलोनाइज करने के लिए, मतलब कि वहाँ फलने फूलने के
हाँ
लिए,
वहाँ बैठ जाएं, वो अपनी जगह जो है वो वहाँ पर गर्म कर लें आराम
बिल्कुल।
से।
अब मैं एक दो चीज़ें सिर्फ बताऊंगा कि अगर, तो पहली तो बात यह है कि अगर माँ की गजाइत सही नहीं है तो वहीं पर आप दुश्मन बैक्टीरिया जो है वो बच्चे को दे रहे हैं,
ठीक है,
लेकिन कुदरत का करना कुछ ऐसा है कि कुछ ना कुछ दोस्त बैक्टीरियाज भी चले जाते हैं, और
ठीक,
वो एज़ कम्पेयर टू दिस बैक्टीरियाज वो थोड़े पावरफुल होते हैं।
जो दोस्त बैक्टीरिया हैं
जी
वो जरूर ताकतवर हैं,
वो
ठीक
फिर ये है कि वो 2-3 अगर हों तो वो 10-12 पर जो है वो काबू पा
है,
लेते
हावी
हैं,
हो जाते हैं, ठीक है,
ठीक है।
सही,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं और उसके नतायज क्या पैदा होते हैं, मिसाल के तौर पर आजकल एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है और मैं इसके शदीद मुखालिफ हूँ, वो ये है कि माएँ जो है वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती,
ठीक है,
ख़ास तौर पर जो माँ जब पहली माँ जब माँ बनती है जो पहला दूध जो आता है उस के मुतल्लिक जो है वो ख़ास तौर पर वेस्टर्न मेडिसिन बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है कि ये नुकसानदेह है,
बिल्कुल,
इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं ये वो,
इसको फेंक देना
हालांकि
चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए
नहीं,
पहले, ठीक,
बिल्कुल असल में ये बात बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। आप ये देखिए कि उसके अंदर 50% जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारी की सारी एंटीबॉडीज होती हैं,
ठीक है,
ये आप ये समझिए कि ये नेचुरल वैक्सीनेशन है,
ठीक है
वो पहला दूध और उसके बाद भी जितने दूध आते हैं वो
जी,
वक्त के साथ साथ आपको मालूम है कि उसमें जो सॉलिड मादा है वो कम होता जाता है, और जो मीन्स जिसको हम ड्राई मैटर कहते हैं,
ठीक,
और जो सॉरी शुरू में जो है वो चूंकि बच्चे का स्टमक सही डेवलप नहीं होता
ठीक है,
इसलिए शुरू में लिक्विड ज़्यादा होता है,
ठीक
ड्राई
है,
मैटर कम होता है,
ठीक है,
वक्त के साथ साथ जूं जूं जो है वो स्टमक डेवलप होता जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता जाता है, प्रोटीन कंटेंट्स और जो ड्राई मैटर है वो ज़्यादा होता जाता है और लिक्विड जो है वो कम होते जाते
ठीक
हैं
है, ताकि वो उस अब जो
जी,
बच्चे का पेट है वो इस काबिल हो गया कि हजम कर सके ना,
बिल्कुल बिल्कुल।
सही,
तो अब उसमें ये है कि पहला दूध भी नहीं देना, उसके बाद भी हमारे यहाँ जो ख्वातीन हैं फैशन की
जी
मारी मैं कहूँगा बेचारी, के अपने
ठीक
अपने साथ भी वो जुल्म करती हैं और
है,
बच्चों के साथ भी अपने जुल्म करती हैं,
ठीक है
वो नहीं देती, तो वहाँ पर वो जो बैक्टीरियाज हैं
जी,
जो दूध के थ्रू एंटीबॉडीज जाती हैं वो उन बैक्टीरियाज को मार सकती हैं
ठीक है,
उनके जो
सही,
गट में मौजूद हैं बच्चों के,
ठीक है,
लेकिन आप नहीं देते, उसके जवाब उसके बजाय आप क्या देते हैं, इंस्टेंट फार्मूलाज,
ठीक है,
या आप फीडर वाला दूध देते हैं,
पाउडर
फीडर
वाला
में भी
दूध या फीड,
ऑफकोर्स आप इंस्टेंट फार्मूलाज देते
ठीक,
हैं।
सही,
मैं पिछले प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी उस चीज़ को एज अ फूड रिकॉग्नाइज नहीं
नहीं
करती,
करती, ठीक है,
जवाब उसका ये होता है कि जो आपकी आर्मी है आपका इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है,
डिफाई सिस्टम जो हमारा, ठीक है,
बिल्कुल। अब वो अटैक करते हैं तो आपको पता है कि फिर जब गोला बारूद गिरता है तो फिर अपनी भी जमीन
पे भी गिरता है, बाहर वालों पे भी गिरता है, ठीक बिल्कुल सही।
तो तबाही फिर उधर अपनी भी होती है और मतलब कि उस पर भी बैक्टीरिया पर भी कुछ ना कुछ होती है, लेकिन वो तादाद में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अरबों में होते हैं,
ठीक है, तो वो इतना असर उन पे
नहीं। और बच्चे का आप इम्यून सिस्टम देखें कि वो अभी डेवलप नहीं हो पाया,
ठीक है,
डेवलप हो रहा है उसको वक्त लगता है, वो भी नहीं है। इसके अलावा आप माँ के दूध में जो उसको प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि उस इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, वो भी उसे नहीं मिले, वो भी उसकी डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। मतलब कि आप इन तमाम अनासर को पाइल अप करें, कंपाइल करें, तो आप ये देखेंगे कि आजकल बच्चों में जो है वो क्यों पैदा होते साथ ही जो है वो बीमारियां होती
बीमारियां कमजोरियां और मुख्तलिफ किस्म की कॉन्जेनिटल। डॉक्टर साहब गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे, यहाँ पर हमने जो है छोटा सा वक्फा लेना है। सिर्फ नाज़रीन को ये बताते चलूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब कहानी के तौर पे आपको ये जो पूरी का सुना रहे हैं कि बदन के अंदर होता क्या है, हकीकत में बिल्कुल ऐसे ही कुछ सिनेरियो होता है। सिर्फ ये है कि आसान लफ्ज़ों में बताना जो है बड़ा कहते हैं हुनर का काम है, और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब के इतने आसान लफ्ज़ों में इतनी कहानी की तरह जो है हमारे नाज़रीन के लिए चीज़ पेश करें। चलते हैं हसन के पास।
के 48 मिनट हो रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक, और आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सो जिंदगी। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले पता नहीं क्या होता है, हम लोग नींद बहुत आती है, बहरा सुबह ही सुबह आते हैं हम लोग, लेकिन प्रोग्राम शुरू होते ही और स्टूडियो में दाखिल होते ही नींद हम लोग की उड़ जाती है। और इसकी मैं जो वजह समझता हूँ ये है कि आपके सामने हम लोगों को बिल्कुल ताज़ा रहना चाहिए, और हम लोग वाकई यही हो जाता है कि उसके बाद फिर सोने का दिल भी नहीं चाहता, बल्कि ये प्रोग्राम यकीनन आप लोगों के लिए अगर बेहतर है तो हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, और इसकी खुशी हम लोगों को एक ज़बरदस्त एनर्जी देती है। इसके बारे में
बिल्कुल ठीक बात आपने की, और बिल्कुल जैसे जैसे कि आजकल जो है इजाज़ साहब सुबह सवेरे हमें बोलते हैं कि जी हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, या नाश्ते पे जो है वो हमारी जो जगह वो अपनी हमारी खाली रखते हैं, तो वो जो है एक यकीनन एक एहसास होता है कि बंदे को कि इस कैमरे के उस तरफ जो है कोई बैठा हुआ देख रहा है, और फिर एक एनर्जी मिलती है। बिल्कुल
बिल्कुल
आपने ठीक बात की, और मैं एक बार फिर हमारे तमाम नाज़रीन जो हमें सुबह सवेरे जो है अपने कमेंट्स में, अपनी ईमेल्स में, अपने पैगामात में हमें याद रखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चलते हैं डॉक्टर उस्मान खाली की तरफ। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें।
जी ये मैंने आपको एक चीज़ बताई, दूसरी चीज़ ये कि आपने वहाँ पर यही बैक्टीरिया जो है वो बच्चे के, बच्चा है या बच्ची है, उसके यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि जो पेल्विस है या ब्लैडर, आप
जो पेशाब का रास्ता जो सारा है,
जो गालिबन उर्दू में मसाना बोलते हैं,
जी बिल्कुल ब्लैडर मसाना हो जाएगा, बिल्कुल सही,
उसमें भी आपके नॉर्मली जो है वो गट फ्लोरा मौजूद होते हैं, और वो कहाँ से आते हैं, वो बेसिकली वहीं ब्लैडर से जो है वो सीप इन करके आते हैं,
ठीक है।
अब आपके आपकी गट के अंदर जो है वो दोस्त बैक्टीरियाज होंगे, तो आपके ब्लैडर के अंदर भी दोस्त बैक्टीरियाज हैं, अगर वो आपके दुश्मन बैक्टीरियाज हैं वहां पर, तो ब्लैडर में भी आपके दुश्मन बैक्टीरियाज,
यानी निज़ाम में अगर हैं तो वहां से उठ के जो है हमारा जो पेशाब का सिस्टम है उसमें आ जाएंगे, अगर वो असल चक्कर जो है वो निज़ाम ही का है।
जी बिल्कुल, वहीं से, और ये सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये बॉडी में जहां जहां बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर स्किन के ऊपर भी जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ये बुनियादी तौर पर उधर ही से आते हैं,
ठीक है,
और बजरिए सर्कुलेशन आते हैं,
ठीक है, खून के साथ जो
घूमने फिरते हुए। अब जो इनका वहां पर फंक्शन क्या है कि ये ब्लैडर के अंदर ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि तकरीबन तमाम डेंजरस चीज़ों के लिए, या दूसरे बैक्टीरियाज हो गए या इवन के वायरसेस हो गए, उनको ये सर्वाइव नहीं करने देता वहाँ पर,
अच्छा,
जिसके जवाब में इन्फेक्शन नामी कोई चीज़ नहीं होती और आपका यूरिनरी ट्रैक जो है वो स्टेराइल रहता
है।
लेकिन बच्चे की सूरत में जैसा कि मैं आपको एक दो फैक्टर्स बता चुका हूँ, तीसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, बच्चे को माँ जो है वो दूध भी नहीं पिला रही, नतीजा क्या होता है कि जो एबनॉर्मल बैक्टीरियाज हैं, जो अनफ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, वो फलते फूलते हैं वहाँ पर,
ठीक है,
जिसके जवाब में, और उनकी रोकथाम करने वाला कोई नहीं, आपका इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं है,
ठीक है,
जिसके जवाब में बच्चा जो है वो इन्फेक्शन
का
शिकार हो जाता है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, हर दूसरे से तीसरा बच्चा आपको पैदाइश के थोड़े ही दिनों बाद आपको नजर आएगा कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है।
बिल्कुल, ये तो आदि हो गया, बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज बनती जा रही है कि बच्चा जो है पैदाइश के एक दो तीन दिन में, एक हफ्ते में, उसमें कोई कोई मसला उसके साथ हो जाता है।
बिल्कुल, मजे की बात अब इसमें ये है कि डॉक्टर हजरात जो है वो वेस्टर्न मेडिसिन में हर चीज को जो है वो इंस्टेंट फिक्सेस के जरिए जो है वो,
यानी बस उसको फौरी तौर पे वहां दबा दिया जाए।
जी जी, अब उसमें वो एक बेसिक लॉजिक की तरफ नहीं जाते, वो ये है कि वो इस एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब ले देकर अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई दोष बैक्टीरियाज मौजूद भी हैं तो
ठीक
वो
है,
उस एंटीबायोटिक से मर जाते हैं।
मारे जाते हैं बिल्कुल।
और ये एंटीबायोटिक्स, ये जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं अनफ्रेंडली, इनको मारना उन एंटीबायोटिक से जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है।
बिल्कुल
एस्टरीचिया एक स्पीशीज है बैक्टीरिया की, जिसको मालूम है लोगों को कि भाई डॉक्टर हजरात को कि वो काफ़ी रेजिस्टेंट होती है।
ठीक है ठीक
इसके अलावा ये ना बैक्टीरिया नहीं होते, सिर्फ यीस्ट भी होते हैं। अब
है
आपको मालूम है कि यीस्ट जो है वो फंगस है, वो एंटीबायोटिक से मर नहीं सकते।
फफूंदी फंगस जो
जी
हम कहते हैं।
बिल्कुल
ठीक है
यीस्ट है, कैंडिडा हो गई,
हाँ बिल्कुल,
ये चीजें भी जो है वो गट में पैदा हो जाती हैं। अमूमी
ठीक
तौर पर ये जब फ्रेंडली बैक्टीरिया ज्यादा तादाद में होते हैं तो ये इंतहाई कम तादाद में होती हैं, और वो जिसे पंजाबी में कहते हैं बंदे के पुत्रों की तरह अच्छे काम करते हैं।
ठीक है सही
लेकिन जब
है।
फ्रेंडली बैक्टीरियाज नहीं होते, इनकी देखभाल करने वाला नहीं होता, तो ये खुले फ्री हो जाते हैं और फिर
ठीक है
जो इनके
जो
बस में
इनके दिल
आती
में
है,
जाए।
और
ठीक
वो
है
अमूमी तौर पर गलत एक्टिविटीज होती हैं।
ठीक है
तो ब्लैडर के अंदर अमूमी तौर पर ठीक है, आपने एंटीबायोटिक्स दे दी, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप जो रहे से फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं उनको मार रहे हैं,
ठीक है
आप जो अनफ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं ठीक है आप उनको भी मार रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ वो यीस्ट और जो यीस्ट की जो डिफरेंट एग्जाम वहां पर पहुंच गई हैं, कैंडिडा हो गया, यीस्ट हो गई,
बिल्कुल
वो आप मार रहे हैं,
सही है,
सॉरी उनको आप मार नहीं सकते
नहीं सकते
एंटीबायोटिक्स
उनको
से,
मार,
क्योंकि
बिल्कुल
वो
एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के लिए बने
बैक्टीरिया
हैं।
के लिए हैं,
ठीक है
लिहाजा डिजीज उधर की उधर, और आपने वो एंटीबायोटिक देकर काम जो है वो मजीद सत्यानाश कर दिया,
ठीक है, दोस्त बैक्टीरिया भी मारे गए और दुश्मन बैक्टीरिया वो
भी
और
मारे गए,
एक्टिव,
लेकिन असल जो है वो चीज वहीं पर मौजूद है,
ठीक
और
है
ये जो यीस्ट जो इन्फेक्शन पैदा करती है वो मजीद जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
ठीक है
अब यहीं से आप इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, वही इम्यून सिस्टम के अंदर मैं जिस तरह आपको लास्ट टाइम मैंने बताया कि जो हमारे एंटेरोसाइट्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो
जी
सेल्स हैं, हर 6 से 7 दिन के बाद जो है वो नए सेल्स जो है वो पैदा होते हैं,
तो पुराने जो है
पिछले
गिर जाएंगे और नए जो
पिछले
है,
झड़ जाते हैं
ठीक है
बजरिया फीसिस जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते
ठीक
हैं
है
और नए सेल जो है वो बन जाते हैं।
ठीक है
अब आप फूड के अंदर आप कुदरती गिजा के बजाय आप फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं,
ठीक है
वो क्या करती हैं कि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती,
ठीक
और
है
ये हमारे जो अनफ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं और हमारी ये फूड प्रोडक्ट्स मिलकर
ठीक
कुछ इस किस्म के काम करती हैं कि वो जो लाइनिंग होती है, जो सेल्स होते हैं उनको ना सिर्फ डैमेज करते हैं बल्कि उन वो जो आपस में जिस तरीके से जुड़े होते हैं उसके दरमियान जो है वो सीप इन करते हैं और वहां से डायरेक्ट ब्लड में एंट्री करते हैं।
अच्छा, बजाय इसके कि वो सेल्स के थ्रू जाएं, सेल
जी
पहले उनको जो है वो डाइजेस्ट करें जो भी उनके साथ करना है, उसके बाद फिर वो खून में घुसें, ये उसके पीछे चले जाते हैं।
जी बिल्कुल,
बड़ी दिलचस्प
अमूमी
बात
तौर पर आपको मालूम है कि फूड जो है वो सेल्स के अंदर से गुजर कर
जी
जो है
बिल्कुल
वो ब्लड का
खून
हिस्सा
के अंदर
बनती
जाएगी।
है
ठीक है
और उसके अंदर फिर उसके अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है।
ठीक है
ये फूड प्रोडक्ट्स और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये जो सेल की लाइनिंग है एब्जॉर्प्शन वाली उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, और सेल के दरमियान जो सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं
सही है
उस दीवार के अंदर जो है वो ये सुराख करते हैं, और वहां से फिर अब सुराख ये हो जाते हैं कि इनकी ब्लड के साथ डायरेक्ट एंट्री हो
डायरेक्ट
जाती है।
ठीक सही
अब वहां से क्या चीजें पैदा होती हैं, वहां से हर किस्म की बीमारियां पैदा
पैदा,
होती हैं
क्योंकि डायरेक्ट जो है जो चीज आप खा रहे हैं वो जारी है खून के अंदर,
जी
बजाय इसके
बिल्कुल।
पे चेक। डॉक्टर साहब गुफ्तगू को जारी रखेंगे, माफ कीजिएगा, चलना है हमने हसन के पास। जी हसन
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत ही दिलचस्प
जी
गुफ्तगू चल
बिल्कुल
रही थी
इत्तफाकन में
और
भी
इन्हें वाकई वक्त का पता नहीं चला।
बिल्कुल
और एक चीज मैं नाजरीन आपको बताते चलूँ कि खाने के ही हवाले से है लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की, थोड़ी यानी कैसे खलाई खाना है। आज से तकरीबन कह सकते हैं कि 60-70 साल पहले जब सबसे ज्यादा रुझान हुआ कि खला में जाने का, तो एक काम जो किया सबने वो ये है कि क्या वहाँ पर ज़िंदगी हो सकती है। ज़िंदगी के लिए यानी बिल्कुल जो इब्तदाई जो चीज़ें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है कि ऑक्सीजन हो कम से कम, और ऐसे यानी रेडिएशंस ना हो जो नुकसान पहुँचाएँ बदन को, जो मुख्तलिफ यानी जैसे ही आप जो मग्नातीसी जो एक कह सकते हैं सिलसिला होता है ज़मीन का, एक पूरा निज़ाम होता है, उससे आप निकल जाएँ तो वो जो मुख्तलिफ रेज, मुख्तलिफ शुआएँ और मुख्तलिफ जो रेडिएशंस पहुँचते हैं सूरज की तरफ से या मुख्तलिफ यानी जो खलाई जो अजसाम होते हैं उनकी तरफ से, वो बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो अभी एक काम ये किया गया है वो ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चांद पे एक कैप्सूल भेजा जाएगा, वो एक चीनी उसके ज़रिए भेजा जा रहा है, रॉकेट के ज़रिए फ़िलहाल भेजा जा रहा है, नासा के तहकीकाती मरकज़ का है, और इसमें ये काम किया जाएगा कि इतना यानी पौधे कई भेजे जाएंगे, उनमें जो चीज़ें शामिल है उनके दाने फ़िलहाल वो ये है कि एक तो मूली के और कद्दू के, वो इतने बड़े कंटेनर्स में होंगे कि मतलब तकरीबन 10 दिन की ऑक्सीजन उसमें होगी और उतने गजाई मवाद उसके लिए फराहम होंगे ताकि वो बढ़ सके। ये असल में देखा जाना चाह रहा है कि अगले 50 साल में क्या मुमकिन है कि हम जाके चांद पे रहें, या ये तो अभी फ़िलहाल 50 साल के लिए वो किया है, वरना अगले 100 साल तक के लिए इसका कह सकते हैं इंतहाई जो आखिरी जो हद है वो 100 साल के लिए रखी गई है, कि देखा जा रहा है कि क्या उस वहाँ पर ज़िंदगी हम लोग बख्श सकते हैं इस बेजान से सैारे को। तो वहाँ पर काम यही किया जा रहा है कि मुख्तलिफ सेल्स बनाए जा रहे हैं, और इस सेल में ख़ास बात यह है कि 10 दिन का, जैसे कि हमने कहा कि ऑक्सीजन उसमें मौजूद है, तो ये वहाँ पर भेजा जाएगा। अगर 10 दिन से ज़्यादा बढ़ सके तो उसमें फिर 20 दिन का एक, माफ़ कीजिएगा, 6 महीने का एक टारगेट रखा जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि रेडिएशन जो मुख्तलिफ सूरज और मुख्तलिफ खलाई अजसाम जो है उनकी तरफ से आती है वो मौसर साबित हो सकती है या नहीं। अगर मौसर साबित हो गई और तबाह हो गया तो कुछ नहीं, अगर नहीं हुआ और ठीक रहा तो फिर वो जो है सोचा जाएगा कि आगे, माफ़ कीजिएगा, कि क्या वाकई हम लोगों के लिए ये चीज़ मुफीद हो सकती है कि हम चांद पर जाएं या नहीं। ऐसे सेल्स बनाए जाएं, ऐसी जगहें बनाई जाएं ताकि वहाँ पर जाके रहा सके। तो सबसे इब्तदाई चीज़ ये है कि एक यानी सब्ज़ माहौल, एक ग्रीन माहौल और एक ऑक्सीजन से भरा हुआ माहौल बनाया जाए। तो इसकी कोशिशें जारी हैं इस वक्त चांद पर भी और मुख्तलिफ सैयारों पर भी, अभी फ़िलहाल तहकीकाती हद तक है। तो ये काफ़ी दिलचस्प चीज़ थी, वैसे इसके बारे में आप खुद नासा की साइट पर भी जाके पढ़ सकते हैं, और कई न्यूज़ एजेंसीज़ ने भी इस पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू की है, और नेचर मैगज़ीन ने, नेचर जर्नल जो है उसमें आप जाके तफसीली तौर पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ओहो, नाश्ते का वक्त नहीं मिला, दोपहर का खाना इतना काम था नहीं खा पाए, रात हम कुछ खा लेंगे, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अनसुनी आपको नहीं लग रही होंगी, ये आजकल के माशरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी हैं और एक मसरूफ़ आदमी की निशानी भी है। लेकिन मसला इसमें ये होता है कि अगर आप अपने वक्त का ख्याल नहीं रखेंगे, खुसूसन खाने पीने का, वो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेंगे। उसके बारे में डॉक्टर साहब वैसे तफसीली तौर पर यकीनन बता सकते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ें वो ये है कि अगर आपने खाना अपना मुनज़्ज़म नहीं किया तो इसमें जो बीमारियां आ सकती हैं वो अपनी जगह पर, सबसे ज़्यादा मोटापे का शिकार लोग वो होते हैं जिनका मुनज़्ज़म खाना नहीं होता, हो सकता है कम खाएं दूसरों के बनिस्बत लेकिन मोटापे का ज़्यादा शिकार होते हैं। इसमें अभी जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने का टाइम मुनज़्ज़म करें, कोशिश करें कि नाश्ता आप सुबह 8 बजे के करीब कर लें। अगर जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो साथ में उनके कुछ दे दें, वरना क्यों, उनको एनर्जी के बहरहाल ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन स्कूल जाने से पहले उनको ज़रूर कुछ खिला दें। और ये काम करें कि खुद अगर आप घर पे हैं तो 8 बजे के आसपास खाना खाएं, ताकि दोपहर तक फिर आपका एक ऐसा निज़ाम इंतज़ाम जो है आपका बिल्कुल मुनासिब हालत में रहता है अगले खाने को एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए। वरना ये होता है कि देर में या जल्दी खाने में, ये होता है और जल्दी खाने में। वैसे इस पर मुकम्मल तौर पर इस पर मुनहसर है कि आपका काम क्या है, लेकिन काफ़ी हद तक इस पर भी है कि आप अपना शेड्यूल कैसे बना रहे हैं। तो 12 बजे के करीब अगर आप दोपहर का खाना खाएंगे तो ये होगा कि बदन उस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुका होगा, एक एक सेल यूं कह सकता हूं तैयार हो चुका होगा नाश्ते खाने के लिए। और इसमें खाने में आप कोशिश करें कि अगर ऑफिस में आपको खाना खाना है तो ऐसा माहौल फराहम करें जहाँ पर आप पुरसकून तरीके से खाएँ, ये खुद बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप बाज़ लोग होता है कि दोपहर का खाना नहीं खाते, कि मसलन डाइट पर हैं, ये रखिए कि अगर आप दोपहर का खाना नहीं खाएंगे तो रात का खाना आप यकीनन ज्यादा खाएंगे, जो आपके लिए ज्यादा मुज़िर है। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो इस हवाले से है कि दोपहर के खाने के हवाले से, वो ये है कि जो एनर्जी आपको मिलेगी उससे आप शाम तक बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। याद होगा आपको चंद हफ्ते पहले हमने बताया था कि तहकीक हुई थी बरतानिया में, और वहाँ पे देखा गया था कि जो लोग दोपहर का खाना नहीं खाते उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है, कि पूरे इक्तिसाद को वो नुकसान पहुँचाते हैं, और किस हद तक था वो पूरा हमने आदाद शुमार आपकी खिदमत में पेश भी किए थे। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि शाम को आप कोशिश करें थोड़ा बहुत नाश्ते का अपने इंतज़ाम कर लें, कि शाम को भी थोड़ा बहुत कुछ खा लें, तकरीबन 4-5 बजे ये काम कर लीजिए, 4 बजे के करीब, ताकि थोड़ा बहुत जब आप खा लेंगे तो इसका मुनासिब यानी जो रद्द अमल ये होगा, बदन जो दिखाएगा वो ये है कि रात को आपको फिर ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें आप मुनासिब तरीके से खाना रात को भी खा सकते हैं और ज़्यादा भी नहीं खाएंगे तो रात को आप आराम से सोएंगे। कोशिश करें रात को एक घंटे यानी सोने से एक घंटे पहले कुछ ना खाएं, क्योंकि बदन जो है वो उसका निज़ाम इंतज़ाम उसी हिसाब से बनाएंगे, वो ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं लाना चाहिए, और ये काम आप करेंगे तो पुरसकून नींद भी आपकी रहेगी। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और खुर्रम भाई के पास।
जी बहुत शुक्रिया, और बड़ी अच्छी बातें, बड़ी मुफीद बातें आपने हमारे नाज़रीन के लिए बताई, हमारे लिए भी बड़ी मुफीद थी। बहरहाल ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ہے گفتگو چل رہی تھی اس کو آگے چلاتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس آخری دو منٹ رہ گئے ہیں، اور اس میں جو ہے اگر آپ اس کو مختصر کچھ بتانا چاہیں۔
اس میں میں ایک اور مثال صرف دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے خاص طور پر لڑکیوں میں یہ چیز آتی ہے کہ جو ہی یہ چیزیں، یہ فوڈ پروڈکٹس اور آپ کو معلوم ہے انفرینڈلی بیکٹیریاز موجود ہیں، وہ بھی ٹاکسنس کریٹ کرتے ہیں
خود،
وہ ٹاکسنس اور جو فوڈ پروڈکٹس جن کو ہماری باڈی فوڈ پروڈکٹس نہیں مانتی، وہ آپ کے بلڈ سرکولیشن میں انٹر ہوتی ہیں۔ اب جب آپ کا امیون سسٹم ان کو جو ہے وہ باڈی کا پارٹ نہیں مانتا یا اس کو فوڈ نہیں مانتا، تو وہ اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور وہ اینٹی باڈیز کے اندر بھی وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کر سکے۔ نتیجہ وہ اینٹی باڈی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایگریگیٹ بنا کر ایک کلمپس کی فارم میں جو ہے وہ بلڈ کے اندر سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن سرکولیشن جو ہے وہ کوئی نتیجہ نہیں ہے ان کا، مطلب کہ ایک اینڈ پوائنٹ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کر جو ہے وہاں پر سٹک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ فیس میں آتے ہیں تو وہاں پر وہ ایکنی کاز کرتے ہیں۔
اچھا ٹھیک،
آپ کے یہ کیل ماسے، آج سے صرف آپ 50-60 سال پہلے دیکھ لیں، آپ کو یہ کیل ماسے کیا، یہ کریمیں شریمیں کوئی کچھ بھی نہیں لگاتا تھا،
ٹھیک ہے،
لیکن کسی کو اس قسم کی بیماریاں نہیں تھیں،
ٹھیک ہے،
لیکن آج آپ دیکھ لیں ہر دوسرا بندہ جو ہے خاص طور پر لڑکیاں اس چیز کی، اور اس میں وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر جا کر اینٹی ایکنی جو ہے وہ کورس کرتے ہیں،
ٹھیک ہے،
جو کہ مزید اس چیز کو جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، اصل پرابلم وہاں سے کریٹ ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے۔
دوسری پرابلم آپ دیکھ لیں کہ آپ الرجیز، آج کل آرتھرائٹس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، آرتھرائٹس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ایگریگیٹس ہیں، اینٹی باڈیز ہیں، وہ وہاں آپ کے جوائنٹس میں جا کر جو ہے وہ اسٹک ہو جاتے ہیں،
اچھا،
اور وہاں وہ ایسی ایکسیسو انفلمیشن کاز کرتے ہیں کہ وہ آرتھرائٹس کاز ہوتی ہے۔
عجیب،
یہ ویسٹرن میڈیسن نے اس میکینزم ضرور جو ہے وہ ڈسکور کر لیا ہے کہ وہاں پر اینٹی باڈیز آ جاتی ہیں، لیکن آج تک وہ یہ نہیں بتا پائی کہ اینٹی باڈیز آتی کہاں سے ہیں،
ٹھیک ہے،
وہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہاں سے آتی ہیں۔ بہرحال اس سے آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ایک ضمنی بات میں اس کے اندر کرتا چلوں، جو مائیں ان کی غذائیت، اور ظاہری سی بات ہے ان کے فرینڈلی بیکٹیریاز اگر وہ نہیں تھے یا بچے کو نہیں دے پائیں، انہیں بچوں کے آئی کیو لیولس جو ہے وہ 20-30 لیولس جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں، ایون کہ وہ سائیکیٹرک ڈیزیزز اور ایون کہ ایسی پرابلمس جن کے سے وہ نارمل جو ہے وہ انسان رہ سکیں یا نارمل آئی کیو پا سکیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ڈسلیکسیا آپ کو معلوم ہے، پڑھنے لکھنے کی بیماری، سکیزوفرینیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ
اوبسیشن اور کمپلسیو جو، بالکل،
آٹیزم پر آج کل بہت ریسرچ ہے، وہ یہ ہے کہ آٹیزم کی مین جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ماں کے نے جو بیکٹیریا ٹرانسفر کیے، اسی لیے آپ کو آٹیزم ان کنٹریز میں نظر آئے گا جہاں پر اصل فوڈ اب نہیں رہی، فوڈ پروڈکٹس ہیں، مطلب کہ تمام ڈیولپڈ کنٹریز۔
بالکل ٹھیک، بالکل صحیح کہا آپ نے۔
اس میں آخری جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ ماں کی جو غذائیت تھی یا اس کی جینیٹکس سے یہ چیز آ رہی ہے، یہ چیزیں جو وہ فکس کی جا سکتی ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے،
ٹھیک
ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت اس قسم کی کوئی اسپیشلائزیشن یا نہیں موجود، اور ویسٹرن میڈیسن کی بکس میں بھی، ایون کہ نیوٹریشن کی بکس میں بھی اس قسم کا کوئی نالج نہیں ملتا،
ٹھیک ہے۔
کچھ ڈاکٹرز ہیں دنیا میں وہ اس پر کام کر رہے ہیں، دو چار انگلینڈ میں ہیں، دو چار یو ایس اے میں ہیں، انہوں نے ایک اسپیسیفک سیٹ اپ بنایا ہے، وہاں پر وہ عورتوں کو جو پریگننٹ ہونے کی خواہش مند ہو وہاں پر آتی ہیں، ان کی نیوٹریشن فکس کی جاتی ہے، ڈیورنگ پریگنینسی ان کی نیوٹریشن کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ایون آفٹر دا پریگنینسی 1-2 ایئرس ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور اسی کے اندر بعض پروفیشنلز ہیں وہ اس چیز کو ایک اور چیز کے ساتھ مکس کر رہے ہیں، وہ ہے پری نیٹل ایجوکیشن۔
صحیح،
بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، بہت ساری ایسی ایجوکیشنل چیزیں کی جا سکتی ہیں، اور ایسا ایک انوائرمنٹ اس کو دیا جا سکتا ہے، اور ایون کہ تھرو نیوٹریشن، کہ آپ کا جو بچہ پیدا ہوگا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ بھائی ہی ول بی اے جینیس، ہی اور شی ول بی اے جینیس، مطلب کہ ہی ول بی اے بورن آئنسٹائن اور لیونارڈو دا وینچی،
ایسا بنے گا۔ صحیح، ٹھیک، بہت 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب، معاف کیجیے گا، بالکل ٹائم ہمارے پاس جو ہے ختم ہو گیا، جلدی سے چلتے ہیں حسن کے پاس۔
بہت بہت شکریہ خرم، اور ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح زندگی، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطیہ نشاط دہلی سے ہمیں جو ہے فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
وعلیکم السلام،
بہت بہت شکریہ آپ نے دوبارہ ہمارے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا عطیہ نشاط صاحبہ۔
جی شکریہ آپ کا بھی۔
جی عطیہ صاحبہ، ہماری جو ہے بات چل رہی تھی گوشت کے بارے میں، اور ایک جو بہت اہم سوال یہاں سب سے اسٹارٹ میں شروع میں پیش آ جاتا وہ یہ کہ جو ریسٹورانٹوں میں فاسٹ فوڈ وغیرہ میں جو گوشت ڈالا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ گوشت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 1% گوشت ہے، کوئی کہتا ہے 10% گوشت ہے، یہ ہوتا ہے کیا، گوشت ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟
जी, इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते में भी तफसील से गुफ्तगू की थी
जी।
कि ये एक रिसर्च आया हुई थी 5 साल पहले पबमेड में, मैंने पिछली मरतबा भी बताया था कि दरहकीकत किसी किसी फूड चेन में तो सिर्फ 2.7% निकला था कि गोश्त है, और किसी किसी में बहुत ज्यादा था तो वो 14% था, उससे ज्यादा किसी में भी नहीं निकला था गोश्त। तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए, उसके बारे में हमने पिछली बार भी गुफ्तगू की थी। खास बात ये है कि ये जो गोश्त आते हैं वो आते हैं प्रोसेस्ड मीट फैक्ट्री से।
ठीक।
अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो गोश्त वहां से आते हैं ये किस किस्म के होते हैं? जो हमें आउटलेट्स में गोश्त मिलते हैं उसकी तो बात हमने कर ली कि वो अच्छा नहीं है, वो उसमें गोश्त का मकदार कम होता है, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो कार्सिजोनिक होती हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए नहीं अच्छी होती है। लेकिन उस गोश्त के बारे में क्या कह सकते हैं हम, जो कि हमें आजकल बड़े बड़े आउटलेट्स में मिलते हैं प्रोसेस्ड मीट के नाम पे?
सही है।
तो मैं आपको ये बताऊं, उसमें जो सबसे खतरनाक एक चीज है वो है सोडियम नाइट्रेट।
सही।
सोडियम नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो हमें गोश्त में इसलिए डाल दी है फैक्ट्रीज ताकि उनका रंग सुर्ख बना रहे,
अच्छा,
यानी वो फ्रेश दिखे, देखने में अच्छे दिखे। ये 70s के अराउंड अमेरिकन फूड जो अथॉरिटी है उसने इसको बैन करने की भी कोशिश की थी एक मरतबा,
अच्छा।
लेकिन आप जानते हैं कि जो कमर्शियलाइजेशन है वो ज्यादा हावी हो जाता है, और उन्होंने रूल आउट किया और बहुत सी रिसर्च पेश की कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, और ये बहुत ही बेदरेज इस्तेमाल हो रहा है आज भी। और अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है कैंसर, वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड, बहुत ही मशहूर एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दुनिया भर में 7,000 जो स्टडीज हो रही थी, रिसर्चेस हो रहे थे, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, उसको बहुत ही क्लोजली स्टडी किया, और एक बॉटम लाइन स्टेटमेंट जो होता है वो ये दिया कि आप बिल्कुल भी प्रोसेस्ड मीट मत खरीदिए, और अगर आपके फ्रिज में है तो उसे फेंक दीजिए।
अच्छा,
यानी वो इस
कदर कीजिएगा। आज हम लोग का वक्त बहुत ही ज्यादा महदूद है, तो मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। इंशाल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू चलेगी हम लोग की अगले हफ्ते भी, लेकिन इस वक्त हम लोग के पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
जी बहुत शुक्रिया।
अच्छा, खुर्रम भाई, एक दो चीज मैंने सुनी थी, वो हाल में एक तहकीक आई थी उसमें मालूम बिल्ली का गोश्त भी डाला गया,
तो वो तो चलो वो तो बिल्कुल ही अलग बहस हो जाती है, उसमें तो अजीब गरीब चीजों के गोश्त इस्तेमाल
हो रहे हैं। किसी मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, वो इस्तेमाल कर रहे थे इसमें, और यहाँ पे
एक मैं बात बताता हूँ, ये वो बात होगी जैसे वो दूध के अंदर चूना डाला जा रहा था कुछ जमाने के, दूध जो है सफेद नजर आए।
बहरहाल ये सारी तरकीबें हम लोग बता भी रहे हैं, और अपनी कंपनियां इस पर अमल भी कर सकती है। अगले हफ्ते का मौजू मैं बताता चलूँ की उम्मीद रखना बहुत ही अहम चीज होता है, इस हवाले से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे हम लोग अगले हफ्ते भी, और शनिचर के दिन हम लोग के मेहमान के
हम मेहमान के बारे में तो हमारे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि हमारा जो हफ्ते का दिन होता है वो दर्ज जिंदगी पे होता है। इंशाल्लाह जो है मजेदार किस्म का, दिलचस्प किस्म का मौजूद आप लोगों की खिदमत में हम लेके आएंगे
इंशाल्लाह। तो आज का प्रोग्राम इसी के साथ अपने इख्तिताम पे पहुंचता है, हम लोग को ईमेल, फेसबुक, कमेंट्स के जरिए हम लोग को आगाह करिएगा, और ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा अहम है, ये जो आप हम लोग के लिए कमेंट्स लिखते हैं बहुत मुझे हम लोग के लिए मुफीद है।
बिल्कुल, मुझे भी जो है बताया गया कि जाफर रजी खान साहब, डॉक्टर जाफर रजी खान जो है हमारे साथ इंशाल्लाह हफ्ते के दिन जो है स्टूडियो में होंगे, और तर्ज जिंदगी पे बात होगी
इंशाल्लाह। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाजत दीजिए,
खुदा हाफिज़।